अल्लाह ताला ने इनायात में एक बहुत खूबसूरत बात हमको बता दी। अब हम थोड़ी सी इस पर तफसील से बात करेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, हमने इनायात का जो टॉपिक रखा था कि फितरते सलीमा पे होने वाले निशानियों से रब को पा लेते हैं, ये जो आज हम लोगों को और खुद को भी सबसे पहले गुनाह करते देखते हैं ना, उसकी वजह पता क्या है? कि हमें अल्लाह की मार्फत नहीं है। आज हमें अल्लाह की असल हकीकत पता चल जाए ना, जिसको आप कह लीजिए कि अल्लाह ताला की मार्फत मिल जाए, तो ये हो ही नहीं सकता कि बंदा कभी गुनाह करे। ठीक है, हम अगर नमाज से ही नहीं पढ़ते तो उसकी वजह यह है कि हमें अल्लाह की कदर नहीं है। अगर हम गुनाह से नहीं रुकते तो अल्लाह का डर नहीं है। अब होता क्या है, एक शख्स मुसलमान घराने में पैदा हुआ, आप और मैं, बोन मुस्लिम बिगड़े हुए। हम कहते चूंकि हमारी माने में बताया तो मुसलमान हो, अल्लाह कुरान रसूल, तो हम इसलिए मुसलमान हैं, मान लेते हैं एक तरफ। ये आयात इस बात की दलील है कि पैदा होने के बाद अगर एक बच्चे को कुफर के माहौल में भी आप छोड़ दें, कुछ भी ना हो उसके पास, कोई कहने वाला ही ना हो कि अल्लाह है, जंगल में छोड़ा है, तो उसकी फितरत अगर सलीम है तो वो उसको बताएगी कि इन नफी खल के समावाती वल अर्दी व अख्तिलाफ लैली व नहार, कि ये कायनात बोलता हुआ सबूत है इस बात का कि अल्लाह है और उसने ये दुनिया बनाई। एक एथियस था, दहरिया जिसको उर्दू में कहेंगे, एक बच्चे से उसने कहा, मैं नहीं मानता कि गॉड है, तुम मुझे साबित कर दो कि खुदा किधर है तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। तो बच्चे ने कहा, आप मुझे ये साबित कर दें कि किधर नहीं है तो मैं आपको $200 दूंगा। इन नफी खल्क समावाती वलअर्द, हर चीज बोल बोल के अल्लाह के वजूद का एहसास दिलाती है। ये आयात बंदों को रब का तारुफ करवाती हैं। इतने बड़े रब की किताब तुम इस वक्त पढ़ और पढ़ा रहे हो, मैं कहती इंसान के हाथ कांप जाते हैं जब उसको यकीन आता है। वैसे तो रोज पकड़ते हैं ना, आदत हो जाती है। मैं किसी को बड़ा कैजुअल सपारा पकड़े देखूं या कुरान बच्चों को ऐसे पकड़े देखूं तो मेरा दिल कटता है। मैं सोचती हूँ कि इसको पता ही नहीं मैंने क्या पकड़ा हुआ है। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि देखो, एक रस्मी ईमान है। देखिए, ईमान असल चीज है। आप ऐसे सोचिए कि जैसे ये होटल है ना, इसमें कमरे भी हैं, हॉल्स भी हैं, किचन भी है, वॉशरूम्स भी हैं, सब कुछ है ना, पार्किंग लॉट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इन सब चीजों में सबसे अहम चीज क्या है? इसकी फाउंडेशन। ये क्यों कायम है? क्योंकि इसके नीचे बुनियाद कायम है। बगैर बुनियाद के ये पूरा ढांचा कायम रह सकता था? बस इसको समझ लें, इस्लाम एक घर है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस्लाम की खिड़कियां भी हैं, दरवाजे भी हैं, कमरे भी हैं। ये पूरी शरीयत क्या है? इस्लाम के मुख्तलिफ कमरे हैं, बेडरूम्स भी हैं। असल चीज इस्लाम की क्या है? बुनियाद। और इस्लाम की बुनियाद है ईमान। ईमान दो किस्म का होता है, एक है तकलीदी ईमान, तकलीदी ईमान, रस्मी ईमान कह लें। ये कौन सा होता है? मुसलमान घर में पैदा होने वाले बच्चे का, शुरू से देखता है या कुछ काम करते हुए वही करने लग गया, ये रस्मी ईमान होता है। ये वो ऊपर का बस वो चॉकलेट की कोटिंग है। एक दूसरा ईमान होता है जिसको इकतसाबी ईमान कहते हैं। इकतसाब है कसब से कमाना, ऐसा ईमान जो बंदा खुद हासिल करे, सर्च करे। हजरत इब्राहिम के बारे में हम सूरत अलनाम में पढ़ेंगे, सूरज चांद सितारों को देख देख के रब को पा रहे थे। इसी तरह सलमान फारसी एक सहाबी थे, फारस में थे, फायर वर्शिपर थे, इनका बाप आतिश परस्त थे। कहाँ अल्लाह ने इनका दिल खोला कि ये कहते थे हम खुद आग को जलाते हैं और जलाने के बाद उसके आगे सजदे शुरू कर देते हैं। होते हवाते वहां से बिकते बकाते एक यहूदी के गुलाम बन के मदीना में आ गए। जैसे कहते हैं कि कुआं प्यासे के पास आता है, ऐसा हुआ कि अल्लाह ने हालात ऐसे बना दिए कि ये खुद नबी सल्लम के पास आ गए और इस तरह से इस्लाम कबूल किया। तो गोया के जो लोग गैर मुस्लिम माहौल में हैं, जहां खुदा को कोई जानता भी नहीं, उनको भी रब मिल जाएगा। शर्त एक है, फितरत सलीम हो। थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं, अल्लाह ताला आसान कर दे। देखिए कि जो वही है ना कुरान, इसका ताल्लुक हमारी फितरत से है। फितरत कहते हैं इंस्टिंक्ट को, जिबिलत, यानी जो हम सब की है। मैं आपको चंद बातें बताती हूँ, शायद आपको बात वादे हो सके उससे। बस आप देखिए कि कुछ चीजें हैं जो फितरत में भी हैं और इस्लाम में भी हैं। इसके ऑपोजिट दूसरी एक फोर्स अपने पास लिखिए, अकल। अकल का ताल्लुक जो होता है ना, वो फलसफे के साथ होता है। कुरान हमारी फितरत को मैच करता है। छोटी सी मिसाल आप देखिए कि एक भाई बहन है, एक ही घर में पले बड़े, एक ही माँ के साथ रहे, जब बड़े हुए उनका निकाह क्यों नहीं कर देते? फितरत के खिलाफ है। इंसान की फितरत किसी भी मजहब में, इस्लाम को छोड़ दीजिए, गैर मुस्लिमों में भी आपने बहुत कम सुना होगा कि भाई बहनों की शादी हो। ये तो एक शख्स ऐसा गुजरा, अल्लाह उसको क्या कहूँ अब हिदायत दे, के जिसने ये फलसफा पेश किया था बहुत बड़ा, कि मुसलमान कितने बेवकूफ हैं, और ये मुसलमानों में से बिगड़ा हुआ शख्स, उसका नाम भी है, जरूरत नहीं बताने की। उसने कहा कितने बेवकूफ लोग हैं, एक लड़की जो घर में खुद मौजूद होती है, जो आपकी हर बात जानती है, और उससे ज्यादा अच्छी लड़की आप कहाँ ढूंढेंगे, उसको छोड़ के आप बाहर की लड़की से शादी करते हैं और अपनी पली पलाई बहन किसी और को दे देते हैं कि आप इसके साथ जो मामला करो, तो बेहतरीन शादी तो भाई बहन की होगी। ये फलसफा है, इसको फलसफी कहते हैं। अकल के अंदर कोई बात आ सकती है जो, लेकिन वो फितरत में नहीं आती। भाई और बहन की शादी फितरत ही नहीं इसको मानती। तो कुरान भी कहता है कि भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। इसी पारे की आखिरी आयते देखिएगा, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, और बाकी तफसील है पूरी। तो कुरान फितरत को टच करता है, टक करता है। यहां बैठते हैं तो आपको नहीं बार बार लगता ये तो मेरी बात थी, ये तो मैंने आज सोची थी, ये तो मेरा मसला था, होता कि नहीं? ये है। और फितरत के साथ जज्बात होते हैं। अल्लाह को पाने के लिए रूखा फीका ताल्लुक नहीं चलेगा आपका, मारेगा, गुस्से करेगा, नमाज पढ़ लो, आग में जाएगा बंदा, कुफर है, निफाक है, ये ताल्लुक नहीं चलता। अल्लाह से बंदे का इमोशनल ताल्लुक जब तक नहीं है तो नमाज भी नहीं है। जब तेरा दिल ही नमाज में ना हो तो तुझे क्या मिले? अल्लाह के नबी ने कहा, तेरे लिए नमाज का बस वो हिस्सा कबूल है, मा हजर फी कलबुक, जिसमें तेरा दिल हाजिर हो। तो क्या पता चला कि जब बंदा कुरान पढ़ता है तो इसकी फितरत के अंदर जाके बिल्कुल सेट होता है। अब बाज दफा अकल कुछ चीजों के दलाइल देगी। अब ये जो भाई बहन की शादी की मिसाल दी है, जो लोग अकल से सोचेंगे हो सकते भटक जाए, कहेंगे साइंसी तौर पे कोई फर्क नहीं है, एक लड़की गैर और बहन में क्या फर्क है, शादी वहां हो सकती है। तो जो लोग कुरान को अकल की बुनियाद पे समझते हैं ना, वो भटक जाते हैं, और जो इसको अपनी फितरत पे लेगा उसको रोज लगेगा कि हकीकत में वही सच है जो इस किताब में। गौर व फिक्र करने के बाद बंदा हकीकत में रब को पा जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ यही बताया कि जो असल प्यार वाला ईमान है ना, वो इकतसाबी ईमान है। अल्लाह को पा लेना किसी दुख में, किसी सुख में, खड़े बैठे, क्यामन कूदन जुनूबिहिम, ये कैफियत होती है ना, चलते फिरते बोलते हर जगह उनको अल्लाह याद आता है। दो लफ्ज हाईलाइट करें आपकी आयतों में लिखे हुए, एक है यस्कुरून और एक है यतफक्करून। एक होता है जिक्र और एक होता है फिक्र। जिक्र के आगे लिखिए, जैसे लोग जिक्र करते हैं अल्लाहू, यानी दीनी काम, 190 का पहला ही लफ्ज़ अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह। जिक्र क्या है? अल्लाह को याद करना, ठीक है, यानी आज के दौर में आप कह लेंगे दीन का काम करना। मजहबी उलमा, दीनदार लोग जो जिक्र के मुख्तलिफ तरीके लोगों को सिखाते हैं। यतफक्करून क्या है? कायनात पे गौर। आज के दौर में हुआ क्या है कि दीनदार लोग जिक्र कर रहे हैं अल्लाह के बारे में, अल्लाह का, अल्लाह को याद करते, नमाजें पढ़ते, रोजे रखते, लेकिन वो यतफक्करून नहीं करते। तफक्कुर को लिख लीजिए रिसर्च, फी खल्के समावात, सूरज चांद सितारों पे कमंदे डालने, हिबल बनाने, स्पेस शटल भेजनी, मेरे साथ चल रहे हैं आप जहनी तौर पे? दीनदार सिर्फ जिक्र की किस्मों पे चले गए अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, लेकिन उनका साइंस से और रिसर्च वर्क से कोई ताल्लुक नहीं रहा। नुकसान क्या हुआ? जो लोग साइंस के लिए उठे, उनकी जिंदगी में रब नहीं था, तो वो ख्याल व फिक्र करते करते पूरी दुनिया की जो साइंस है उस पर वो छा गए। आपको पता है कि जब ये साइंसदान कोई चीज डिस्कवर करते हैं तो इस पे भी बहसें होती हैं, लड़ाइयाँ तक होती हैं, साइंस की बड़ी मारूफ लड़ाई है ये चीज मैंने डिस्कवर की है, ये तुमने की है। एक शख्स था जो बहुत बड़ा दीनदार था। उसने सोचा कि जब आसमान पे चांद है तो मैं भी बना सकता हूँ। बहुत कोशिश करके उसने कुछ गैसों को जमा किया और एक चांद की तरह का रोशनी का गोला बना लिया। अब पता क्या हुआ, जो ही उसने चांद बनाया उसने खुदाई का दावा कर दिया और मुर्तद हो गया, दीन से निकल गया। ये डार्विन साहब के साथ क्या हुआ था, आप पता, ये प्रीस्ट था, क्रिश्चियन था, अल्लाह को मानता था, लेकिन एवोल्यूशन की थ्योरी जब इसने पेश की तो ये बेदीन हो गया, कहता मैं नहीं मानता किसी खुदा को। तो जब जिक्र के बगैर सिर्फ रिसर्च वर्क लोग करेंगे तो वो होगा जो आज हो रहा है। हर नई मशीन, रिसर्च, कंप्यूटर, टेलीफोन, सेलफोन नॉन मुस्लिम बना रहे हैं और हम मुसलमान सिर्फ जिक्र अल्लाहू अल्लाहू पे या मजहबी चीजें। जब दुनिया का सारा, यानी आप कहें कि रिसर्च वर्क नॉन मुस्लिम के पास आया तो हम सबको इनकी जरूरत पड़ी ना। अब हमें आईफोन खरीदना है तो हमें नॉन मुस्लिम्स के पास जाना पड़ेगा, हमें ये माइक खरीदना है तो नॉन मुस्लिम कंपनियों के पास जाना पड़ता है। तो ये हमारे बेताज बादशाह बन गए। जरूरत हम सबको है इन चीजों की, दुनिया की तरक्की से तो हम नहीं रुक सकते ना। तो जब नॉन मुस्लिम्स के हाथ में दुनियावी उलूम आए तो उन्होंने लोगों को अपनी तरफ कर लिया, मटीरियलिस्टिक हो गए लोग। जब इस्लाम अपनी असल शक्ल में था तो जिक्र और तफक्कुर एक ही जगह जमा था और वो मुस्लिम्स थे। कैन यू बिलीव के मुसलमान मस्जिद से निकलकर लेबोरेटरी में जाए और वहां जाके अपनी रिसर्च वर्क करें और इतने में आवाज आती है हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, वो लेबोरेटरी से निकले और आके मस्जिद में नमाज पढ़े। ये था बेस्ट कॉम्बिनेशन। जब इस्लाम अपने रूज पे था तो यही था, और जब अब दोबारा रूज आना है ना इसी पे ही आना है, और माशाल्लाह इसके असरात दिख रहे हैं यंगस्टर्स में। पढ़ा लिखा तबका आगे आएगा। ये जो बीच की सदी गुजरी है ना, 19वीं और 18वीं और अब थोड़ी सी 20वीं सदी, इसमें हुआ ही है कि मजहबी लोग अलग हो गए और दुनियादार जो है दुनिया उनके हाथ में आ गई। मुसलमान साइंसदान जब सूरज चांद पे गौर करता है तो ये कहता है के मा खलक तहाजा बातिल और फकिन अजा बन्नार, उसको आग की फिक्र लग जाती है कि अल्लाह ये रोज सूरज की मौत होती है, एक दिन मेरी भी होनी है। ये रोज सूरज अगले दिन सुबह जिंदा कर दिया जाता है, तूने मुझे भी जिंदा करना है। लेकिन दुनियादार जब होता है वो कहता है देखो ऐश करो, मौज मस्ती करो, फिर वो उन्हीं चीजों को इंसानियत के कभी नुकसान के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये आयात पैगाम दे रही है कि कुरान सारे नहीं पढ़ेंगे आपसे। आप देखिए कि रिवॉर्ड जितने भी लोग हो रहे हैं कितने को हो रहे हैं, आटे में नमक है ना अभी, जबकि ये दीन तो पूरी दुनिया के लिए है। साइंस में मुसलमान बढ़ेंगे, कायनात पे गौर व फिक्र करेंगे, दुनियावी मैदान में कूदेंगे तो लोगों को खुद बहुत इस्लाम दिखा देंगे। इसलिए बहुत जरूरत है आज के दौर में पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की। जिक्र अल्लाह का है और गौर व फिक्र मखलूक में है। जो अल्लाह की जात में गौर व फिक्र करेगा वो बहक जाएगा। तो अल्लाह कहता है कि मेरी पैदा की हुई चीजों पे गौर करो और मुझ तक पहुंचो। सूरज की रोशनी में हम सब कुछ देखते हैं लेकिन सूरज को नहीं देख सकते। कभी आप रोशनी में उधर देखे तो आपकी आंखें चुंधियाई जाती हैं। यही मतलब है, अल्लाह की जात को नहीं तुम देख सकते लेकिन कायनात को देख सकते हो। साइंस पढ़ाने का बेहतरीन तरीका है, अगर साइंस टीचर्स खुद अल्लाह से जुड़े हों तो क्या वो रोज वही असरात ना लेके आए अपनी क्लास पे, जो इस वक्त कुरान पढ़ने के बाद हमारे दिल पे होते हैं। बच्चे घर आके आपको बताएं कि अम्मी आज हमने सूरज की डिटेल्स पढ़ी, और आपको होता है कि सूरज किसने बनाया और सूरज कहाँ जाता है रात को। तो बच्चों को साइंस के साथ दीन भी आएगा। आज जरूरत है बच्चों को, अपने मुसलमान बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम सिखाने का। फिर पता चलता है कि ये सब कुछ तब होगा जब, वही बात दोबारा कहती हूँ कि जब तक मुसलमान दुनियावी तरक्की में आगे नहीं आएंगे वो दीन की तरक्की में भी नहीं आएंगे। हमारा हाल क्या है कि मुसलमानों के भी माशाल्लाह बहुत लोग पढ़े लिखे हैं दुनियावी चीज़ें, लेकिन उनका अपना ही जहन साफ हो चुका होता है, ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आते हैं कि अल्लाह ताला को ही भूल चुके होते हैं। और यहाँ ये भी बता दिया गया कि अक्लमंदी का तकाजा है कि बंदा जहन्नुम की आग से पनाह मांगे। रुसवाई, थप्पड़ मारे कोई तो कैसा लगता है एक इंसान को। फिर आप देखिए कि नायतों में बार बार आ रहा है कि अल्लाह हम ईमान लाए, हमने तुझे माना, इन्ना कसम मुनादी ये युनादी लिल ईमान। तो तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान अपने नेक अमाल का वसीला दे सकता है। अल्लाह हमें ईमान के लिए बोलते हैं इन्ना ना आमन्ना, ठीक है, अमल साले का वसीला इंसान दे सकता है। दुआएं मांगते हुए लोग पूछते हैं ना क्या वसीला जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है वसीला। किस चीज़ का वसीला जायज़ है? अपने नेक अमल का। यहाँ दलील मिल रही है ना, अभी तो आप थके हुए तो आपको पता नहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो कह रहे अल्लाह ने इन्ना ना आमन्ना फामन्ना, इन्ना ना हमने ईमान लाए, तो ईमान का वसीला दे रहे हैं ना। इसी तरह नेक कामों का वसीला दिया जा सकता है। बुखारी की मारूफ रिवायत है, तीन लोग एक अंधेरे गार में फंस गए थे और अपने नेक कामों को याद करते गए और गार से निकलने का रास्ता बना। इसी तरह इंसान अल्लाह के नामों का वसीला दे सकता है। जैसे हदीस में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक बि अस्माइल हुस्ना, अल्लाह मैं तुझे तेरे प्यारे नामों से पुकारता हूँ। फिर इसी तरह अल्लाह तला की सिफात का वसीला दिया जा सकता है। जैसे बिरहमति का अस्तगीस, अल्लाह तेरी रहमत के साथ मैं मदद मांगती हूँ, या है यू या कयूम बिरहमति का अस्तगीस। फिर इसी तरह अल्लाह तला के कामों का वसीला दिया जा सकता है कि अल्लाह कोई काम पहले कर चुके हैं तो दोबारा कर दे, जैसे कमा सल्लैत अला इब्राहिम और कमा बारकत अला इब्राहिम। फिर इसी तरह इंसान अपने गुनाहों का, अपने हाल का वसीला दे सकता है कि अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह ताला तू ही रहम वाला है और मैंने अपने नफ्स पे बहुत जुल्म किए। तो बात यह है कि जब इंसान ये सब सोचता है तो उसका दिल बैठता है। इसके बाद आप देखिएगा कि अगली आयतों में एक दूसरा बहुत बड़ा रिसोर्स कि जिसकी तरीके से इंसान अल्लाह का कुर्ब भी पा सकता है और अल्लाह से दूर होता है। अब इसके बाद अगली आयतों पर ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला यहाँ हमें सबको दावत देते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी का सोच का किबला ठीक करो। पीछे बात हुई कि तफक्कुर दूसरे लोग करते हैं और जिक्र अलग करते हैं। तब हुआ क्या कि जिन लोगों ने दुनिया में रिसर्च वर्क किया वो आगे चले गए। जो भी जिक्र हो उसी की कंटिन्यूशन आयत 196 में, ला यगुर्रन्नक तकल्लुबुल्लज़ीन कफरू फिल बिलाद, ए नबी आपको धोखे में न डाले इन काफिरों का चलना फिरना शहरों में। यानी जब हम दुनिया में कुफार को तरक्की करता देखते हैं तो दिल में ख्याल क्या आता है? बस इनको इसलिए तरक्की मिली कि ये कपड़े थोड़े पहनते हैं, इसलिए इनको तरक्की मिली कि ये कुफर करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, जो दुनियावी मैदान में मेहनत करेगा उसको दुनिया में इज्जत मिल जाएगी। आज अगर आप दूसरी चीजों को देखिए, मेड इन जापान और मेड इन अमेरिका और चाइना की स्टैम्प सारी दुनिया में पहुंची है तो आराम से पहुंचती है, मेहनत की है ना, काम करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि ये जो इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वर्ल्ड टूर्स हैं इधर के उधर, आप इनसे इम्प्रेस ना हो। यहाँ मुराद क्या है कि आप इनसे इम्प्रेस ना हो इनकी इन बातों पे, बल्कि मताउन कलील, थोड़ा सा फायदा है। सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है, वबीसल मिहाद, और वो तो बहुत बुरा ठिकाना है। यानी तुम जाहरी तौर पे कुफार की तरक्कियों से इम्प्रेस ना हो, इनकी ये जो सारी भाग दौड़ है, जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें हैं, प्रोपेगंडे करते हैं, तुम इससे परेशान ना हो, ये 4 दिन का फायदा है। इसके बरक्स आयत 198, लाकिनिल्लज़ीन तक़व रब्बहुम, इसके बरक्स जिन लोगों ने अपने रब का तकवा इख्तियार किया, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनके लिए बागात हैं जिनके दामन में नदियां बहती होंगी, खालिदीन फीहा, वो हमेशा हमेशा उसमें रहने वाले हैं, नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, ये इनके लिए इब्तदाई मेहमान नवाजी है इनके रब की तरफ से, और वमा इंदल्लाह ही खैरुल अबरार, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो तो बेहतर है नेक लोगों के लिए। दो मुख्तलिफ किरदार दिखा दिए, एक वो है जो कुफर के साथ दुनिया की तरक्कियां कर रहा है, अल्लाह कहता फिक्र ना करो थोड़े दिन की खेल है खत्म हो जाएगी, कुफर के साथ दुनिया की कोई तरक्की इम्प्रेस करने वाली चीज नहीं है। इसके बरक्स जो लोग तकवा के साथ जिए, जिन्होंने अल्लाह की रजा भी पाई, दुनिया में भी कामयाब हुए, असल उनके पास है। यहाँ लफ्ज देखिएगा नुजुल है, नुजुल कहते हैं पहला खाना जो मेहमान के आने पे दिया जाए, और हम सब पाकिस्तानी तो इसको बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं और इंडियन भी गालिबन, कि कितना ज्यादा इंसान इख्तमाम करता है कि पहला खाना उनको अच्छा खिलाए। अल्लाह ताला जन्नतियों को सबसे पहला खाना अपनी पसंद से खिलाएंगे। फिर उसके बाद जो मांगो वो मिलेगा। तो अल्लाह ताला उनको इस तरह से एंटरटेन करेंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शर्त एक है, अबरार बनना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी रिवायत है बुखारी और मुस्लिम में, और हदीस कुदसी है। قال الله تبارك وتعالى, अल्लाह ताला फरमाता है, आदत तुल इबाद सालिहीन, मैंने तैयार किया है अपने नेक बंदों के लिए क्या, माल आइनुन रात, जो किसी आंख ने नहीं देखा, वला उजुनुन समयत, और किसी कान ने नहीं सुना, वला खतरा अला कल्बी बशर, और किसी बशर के दिल में उसका ख्याल तक नहीं आया। और कहा ना समझ आए ना यकीन आए तो जाके पढ़ लो। कौन सी आयत? सूरत सजदा की, फला तालम नफ्सुम्मा हुया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने क्या तैयार किया। मुझे ऐसे लगता है कि कुरान की इस महफिल में अल्लाह ताला हमें जन्नत की सैर करवाता है। बाज दफा तो खुद को चुटकी काटने को दिल चाहता है कि क्या ये हकीकत है, क्या हकीकत में हम उस जन्नत में हैं या बाहर हैं। आपको नहीं लगता? यकीन करें, अगर हमें घर जाने का फिक्र ना हो तो मेरा हाल यहाँ सारा सारा दिन हम बैठे रहे। कभी थके आप? कितने बजे से बैठे हैं? सुबह से लेके आप 9:45 से लेके अब तक का वक्त ले, 1:45 हो गए हैं, पूरे 4 घंटे। बीच में उठे भी अगर, क्या हम इस बैठने में कोई बोझ महसूस करते हैं दिल पे? कोई थकन, कोई नींद, कोई सुस्ती? वजह क्या है? ये रब का कलाम है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उस जन्नत की तड़प लगा दे। अल्लाह का कलाम बड़ी प्यारी चीज़ है। देखिए, जब कोई साइट सीइंग पे जाता है ना, आज का सारा सबक मेरे दिमाग में बस बाहर की चीज़ों पे नज़र डलवा रहा है। आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो मज़ा आता है ना, सूरज चांद सितारे फल फूल क्या कुछ देखते हैं, फिर भी थक जाते हैं कभी कभी। तो जो मज़ा कायनात को देखकर बंदे को आता है, वही मज़ा कुरान को पढ़ के आता है, क्योंकि कायनात अल्लाह का फेल है तो कुरान अल्लाह का कौल है। तो इसलिए कभी इससे दिल में अल्लाह ना करें, अल्लाह ताला का इंसाफ देखिए। हम सोचते हैं सिर्फ हम मुसलमान ऐसे हैं, अल्लाह कहते हैं नो, पिछले लोगों में भी कुछ लोग ऐसे ही थे। आयत 199 जो सेकंड लास्ट आयत है सबक की, वह इन मिन अहलिल किताब, बेशक अहले किताब में वो भी हैं। कौन? लमयूमिनु बिल्लाह, जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, सिर्फ अल्लाह ताला पर नहीं, बल्कि वमा उन्जिला इलैकुम वमा उन्जिला इलैहिम, और उस पर भी ईमान रखते हैं जो तुम पर नाजिल किया गया, और इस पर भी जो इन पर नाजिल किया गया। यानी इतने खुले दिल वाले हैं कि अपनी किताबों के साथ ए मोहम्मद आपके दिन को मानते हैं। लिख लीजिए इसके नीचे, वो अहले किताब जो दिल से मोमिन हैं, ईमान पे आ चुके हैं, कलमा भी पढ़ चुके हैं, वो नहीं डरे अपने लोगों से, क्योंकि खाशईन लिल्लाह, वो अल्लाह से डरते रहते हैं। ऐसे लोग जो अल्लाह से डरते हैं और अहले किताब हैं, और इसके बावजूद आप पर भी ईमान लाते हैं, ला यश्तरू नबी आयातिल्लाहि समनन कलीला, वो तो अल्लाह की आयतों को हकीर सी कीमत पर फरोख्त नहीं करते, थोड़े थोड़े दुनियावी फायदों के लिए दीन का नुकसान नहीं करते। उलाइक लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, ऐसे ही लोगों का अजर इनके रब के पास महफूज है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यकीनन अल्लाह ताला हिसाब चुकाने वाला है। क्या पता चला कि वो लोग जो अहले किताब में थे और फिर उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, उनकी तारीफ है इन आयतों में कि देखो सारे ऐसे नहीं। अच्छा, यहां से लगता है ना कि अल्लाह को अपने हर बंदे से प्यार है। हम किसी की तारीफें करें तो गुनगाएंगे, एक एज पे पहुंच जाएंगे, और किसी की बुराई करें तो दूसरे एज पे। कुफार का कितना तذکرہ इस सूरत में गुजरा, यहूद का, नसारा का, उनकी इस्लाम की दुश्मनियों का कितना तذکرہ गुजरा, लेकिन आखिर में अल्लाह ने उन चंद मुट्ठी भर लोगों की तारीफ कर दी कि जो पहले किसी और दीन पे थे, अब इस्लाम पे आ गए। और हदीस में आता है कि ऐसा शख्स जो पहले एक शरीयत पे हो फिर दूसरी पे हो, तो उसको उसके हर अमल का दुगना अजर मिलता है। वो $1 अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं तो उनके $2 कम से कम लिखे जाते हैं, और मल्टीपल किए जाएं तो 7 के मल्टीपल पे देखिए कहाँ बात जाती है। तो अल्लाह कभी अजर ज़ाया नहीं करेगा। पीछे बात हुई ना कि अल्लाह अजर ज़ाया नहीं करता औरत का या मर्द का, बिल्कुल यहां भी यही बात लगती है। आखिरी आयत है, फिर इसमें कुछ चीजें जो रह गई उसको हम बाद में देख लेंगे। आखिरी आयत में अब उम्मते मुस्लिमा को चार कामों के करने का हुक्म है। इस आयत को तो वही सुने जिसके दिल में उम्मत का दर्द है, और रस्मी कलामी दीनदारी तो बहुत है, लेकिन आप अगर एक गोल बनाकर दीन करना चाहते हैं, दीन पे अमल करते हैं, तो फिर चार काम करने पड़ेंगे। खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, लिखिए अपना नाम। डायरेक्ट आप अपना नाम लिखे, मैं अपना लिख लूं दिल पे। मेरा रब मुझको पुकारता है, बहुत तुम्हें दर्द है अपने दीन का, इस्लाम का, उम्मते मुस्लिमा की जुबू हाली का, तो क्या करो, इसबिरू, सब्र करो। इसके नीचे लिखिए जाती सब्र, मैं अब डिटेल्स बताऊंगी बाद में। पहले खुद दीन पे अमल करो, खुद दीन पे जमो, नाफरमानी के काम छोड़ो, फरमाबरदारी के काम करो। कोई दुख बीमारी तकलीफ आ जाए जिंदगी में तो सब्र करो, इस भी रो। और सब्र का लफ्ज पीछे भी जिक्र हुआ था, बांध रखना, रोक रखना, सेल्फ कंट्रोल करो, डोंट बी रिएक्शनरी। गुनाहों से रोकने पे सब्र, इतात पे सब्र, और मुसीबतों के वक्त बांध के रखो। ये पहला दर्जा, ये हर एक से मतलूब है, इंडिविजुअल इनफिरादी सब्र करो। दूसरा दर्जा, वसाबिरू, और सब्र में अपने दुश्मनों से भिड़ जाओ। ये थोड़ा सा अगला दर्जा होता है। देखिए, पहले खुद जमो, ये है सब्र, इस बिरू, और साबिरू क्या है, दूसरों को जमाओ। पहले खुद साबित कदम रहो, फिर दूसरों को ले जाओ। इसको मुसाबरत कहते हैं, सब्र और इस्तकामत में दुश्मन से भिड़ जाना। एक तो सब्र वो है ना जो तुम अपने ऊपर लगे हुए दुखों का कर रहे हो, 70 मारे गए, ये हुआ, 1 साल के बाद फिर हमला हो गया, का नहीं, अब तुमने दूसरों को भी रोकना है। मुसाबरत क्या होती है, कि इंसान दूसरों को भी दीन पे जमाए। तुम जमे हुए हो कोर्स पे, जो गिर रहे हो उनको थामो, ये है सब्र। वतवासो बिल हक की, वतवासो बिल सब्र। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा, वो राबितु, ये तीसरा दर्जा है। राबिता रखो, मरबूत रहो, मुराबित अरबी जबान में पहरे को कहते हैं, गार्ड करना, डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए बाहम जुड़ना। गज़वे उहद में शिकस्त का सबब नज्म व जब्त की खराबी थी, ढीलापन था, जो बात सुनी वो मानी नहीं, भूल गए। यहां सबर और मुसाबरत के साथ राबते की बात करके उम्मते मुस्लिमा को डिसिप्लिन रहने की दावत है। और रिबात का लफ्ज जो है ना अरबी जुबान में, नफ्स को अच्छी नीयत पर बांधना, इसके दर्जे होते हैं। लिखिएगा, आपने उर्दू में एक लफ्ज सुना, वह रिबातुल खैल, कुरान का लफ्ज है वैसे। एक मदरसा है इस कराची में, उसका नाम अर रिबात है, बड़ा प्यारा नाम लगता है। बांधना, ये जब कहते हैं ना मेरा आपसे राबता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट, ये वही है। जब राबता होता है तो हम बंधे रहते हैं ना, जैसे मेरे पास आपका सेलफोन है, क्या मेरा तो हम बंद गए ना, और नंबर नहीं होगा, राबता नहीं होगा, तो मैं आपको नहीं ढूंढ सकती, आप मुझे नहीं ढूंढ सकते। तो राबते में मानी क्या होता है, बांधना, ठीक है। इसके दर्जे होते हैं, सबसे पहले खुद को बांधो, अच्छी नीयतें करते हो तो बांधे रखो। हम बाज दफा नेकी के किसी जज्बे से मुतासिर होकर नेकी कर लेते हैं, बाद में अफसोस करने लग जाते हैं, मेरा ख्याल है मैं बातों में आ गई थी, मेरा ख्याल है मैं जज्बाती हो गई थी, फिर किसी दूसरे से जिक्र किया और वो फितना बन जाएगा। जो नीयत की है खुद कायम रहो, ठीक है। फिर उसके बाद रिबात का अगला दर्जा क्या होता है, कि तुम इज्तमाई सतह पर भी बंधो। वो कैसे होगा, एक दूसरे को बांध के रखो, खुद नहीं सिर्फ नेकी करो, दूसरों को भी नेकी की दावत दो। खुद नमाज पढ़ते हो, दूसरों को भी हुक्म दो, साथ उनको लेके चलो। फिर आपस के ताल्लुकात को बांधो, ये भी इसमें आता है, अपने नफ्स को भी और साथियों को भी तैयार रखो, सिला रहमी करो, रिश्ते ना काटो, टूट के ना रहो। इसी तरह रिबात का एक अगला दर्जा, सरहदों की हिफाजत करो, मोर्चे बांधो। अभी जंग नहीं हो रही, सिर्फ दिफा का काम है, तो तुम उस वक्त भी जमे रहो। ये है रिवात जिसके बारे में हदीस में बहुत ही खूबसूरत हमें इशारे मिलते हैं। एक अगला दर्जा रिवात का, इल्मी सरहदों की हिफाजत करो। आज अकायद बिगड़ गए, सोचे बदल गई, सुन्नतों में बिदतें शामिल हो गई, अकीदे में जोफ हो गया। तुम कुरान और हदीस के इल्म को आम करो ताकि लोगों को दीन की असल समझ आए। क्या आज आपको एक कंफ्यूजन नहीं दिखता? हर एक परेशान है, समझ नहीं आती, ये ठीक है, वो ठीक है, ये वो ठीक है, ये ठीक है। आज हमारे अंदर इस्लाम के ऊपर फख्र नहीं रहा। इन आयात में अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म देता है कि पहले अपनी जात इसबिरू, फिर साबिरू दूसरों का, और राबितू आपस में रवाबित रखो, और आखिरी चीज वत्तकुल्ला, चौथी कील क्या है? तकवा की। अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। जब ये सब कर लेगी उम्मत मुस्लिमा तो लअल्लकुम तुफ्लिहून, फिर तुम फलाह पा लोगे, फिर तुम्हारे पास फलाह के रास्ते खुल जाएंगे। पारे के शुरू में मैंने बताया था, इंशाल्लाह हम इस संडे को भी आपको दावत दे रहे हैं। आपके लिए सूरत आल इमरान की तकमील की एक खुशी क्या है कि इस वीक आप संडे को भी आएंगे। कितने लोग जमेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस पारे की आखिरी आयतें उस दिन करके खुलासा करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जिंदगी में जब भी दीन आता है ना, तो बंदे के लिए नेकियां करना आसान होना चाहिए और गुनाहों को मुश्किल लगना चाहिए। जब अल्लाह के दीन के तकाजे आम जिंदगी के तकाजों से टकराने लगें, तो अल्लाह ताला कहते हैं साबिरू, सबर करो, और साबिरू रोके रखो। रिबात की एक और बड़ी खूबसूरत तारीफ हदीस में आती है, और वो क्या है कि आपने फरमाया कि तीन काम ऐसे हैं कि जिनके सवाब को लिखने में फरिश्ते एक दूसरे से झगड़ते हैं। बड़ी तवील हदीस है, उसका एक छोटा सा खुलासा बता रही हूँ कि जब कोई बंदा ऐसे काम करता है कि उसका अजर इतना ज्यादा कि हर फरिश्ते की ख्वाहिश क्या है कि मैं ये लिखूं, तो उसमें एक काम क्या है, वुजू करना मुश्किल हालात में, अलवुदू इंदल मकारह, बस सर्दी बहुत है फिर भी वजू करना, ये मेरी बात है, नफ्स बनता है ना। इसी तरह चल के मस्जिद की तरफ जाना, वॉक करके अपने कदमों पे मस्जिद के लिए जाना, और तीसरा इंतजारुस्सलाति बादस सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार। फरमाया जालिकुमुर्रिबात, क्या पता चला कि जब एक मुसलमान जाती जिंदगी में इस तरह का नमाजी हो जाएगा, ना वजू की वजह से नमाज छूटी, ना पैदल चल के जाने की वजह से छूटी, और ना वहां बैठ के इंतजार करना मुश्किल लगा, तो इंशाल्लाह मुसलमान की इल्मी सरहदों का भी इत्तिफाक होगा और नजरियाती सरहदों का भी। आज कुफार अपने कुफर पे जमे हुए हैं, अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को कहता है कि तुम अपने इस्लाम पे जमो, तुम अपने इस दीन को पेश करो। आप कह सकते हैं कि बहसियत उम्मत मुस्लिमा हमारे मिसाइल का हल इस आयत 200 में। यहां मेरे और आपकी भी बात है, और वो क्या कि जब हम दीन पे आते हैं तो क्या होता है, दूसरे हमसे नाराज है, हम उनके लिए मिसफिट, वो हमारे लिए मिसफिट, क्या करो राबे। तो आप देखिए कि जब अल्लाह के दीन से खास ताल्लुक होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन लोगों से भी ताल्लुक हो जाता है। मुसलमान एक ईंट की तरह है, एक ईंट से दूसरी ईंट जुड़ती है तो दोस्ती होती है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप अगर यहाँ पिछले 4 माह से आ रही हैं और आप अकेली हैं और जमी हुई हैं अभी, तो बड़ी बात है। और अगर आपके साथ आपकी कोई दोस्त, कोई फैमिली का बंदा, कोई और आ रहा है, तो आपका आना आसान हो जाता है। जब दूसरे काम करते हैं ना, तो हमारा भी करना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं राबितु, राबते रखो। अब देखिए जब दूसरे आपको छोड़ते हैं, अब होता क्या कि जब हम दीन पे आते हैं ना, तो बड़े दुख जिंदगी में आ जाते हैं। हाय, नो एनिवर्सरी, नो सालगिरह, कोई पार्टी नहीं, कोई फन नहीं, अब क्या करें? क्यों रोते हो? नए दोस्त बन जाएंगे, आपस में रबते रखो, एक आपका फ्रेंडशिप सर्कल बनता है। आप एक दूसरे से मिले, आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को बच्चों से मिलवाएं, आप अपने शोहरों को दूसरों के शोहरों से मिलवाएं, आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा, हो सकता है आपस में आपके बच्चों के, आपकी दोस्तों के बच्चों से निकाह शादियां तक हो जाएं। क्योंकि इंसान हमेशा लाइक माइंडेड लोगों में खुश रहता है। तो अल्लाह ताला यहाँ उम्मत मुस्लिमा को एक बड़ा खूबसूरत सबक दे रहा है कि कि अपनी अपनी जिंदगी ना बसर करो, कि घर में रहते हुए दूसरे कमरे वालों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ और वो बीत गए कि अभी मौजूद है। आज इतना इंडिविजुअलिज्म हो गया कि बाज दफा माँ बाप खुद अपने बच्चों से बात करते हुए डरते हैं। माँ बाप कह नहीं सकते बच्चों को कि आज आप भी रुक जाइए घर में और हम भी और हम सब मिलके काम को करेंगे। तो इस पे इंशाल्लाह मैं कल बात थोड़ी सी करूंगी, क्योंकि इसमें काफी अमल के नुक्ते हैं। आज मैं नहीं चाहती कि वक्त ऊपर हो जाए हमारा ज्यादा और हम इसको ना लें, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस सूरत ने हमें क्या दिया कि तुम दीन के नाम पे जुड़ो। अल्लाह के साथ ताल्लुक कब बनेगा? जब बंदों के साथ भी होगा। आपका मेरा दीन कट के रहने वाला दीन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको बेहतरीन तरीके से इन चीजों पे ले।
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.